Hare Krishna, this is special class on Tulsi Maharani, part 1, given in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, 26 July 2016, by myself, Prashant Mukund Das.
Tulsi Krishna Priya Si Namo Nama Braja Radha Krishna Seva Pao Eya Bilashi Braja Radha Krishna Seva Pao Eya Bilashi Namo Nama Tulsi Krishna Priya Se Namo Nama Tulsi Krishna Priya Se Namo Nama De Tomar Sharan Layo Tara Vancha Purnayo De Tomar Sharan Layo Tara Vancha Purnayo Kripa Kare Kara Tare Vrindavan Vasi Kripa Kare Karo Tare Vrindavan Vasi Mora Ei Abhelas Vilas Kunje Diyo Vas Mora Ei Abhelas Vilas Kunje Diyo Vas Nayane Hari Bosada Yugala Rupa Rashi Nayane Hari Bosada Yugala Rupa Rashi Eye Nivedana Dhara Sakhiranugata Kara Eye Nivedana Dhara Sakhiranugata Kara Seva Adhikara Diye Kara Nijadasi Seva Adhikara Diye Kara Nijadasi Bina Krishna Dase Kahe Eje Namo Rahae Bina Krishna Dase Kahe Eje Namo Rahae Bina Krishna Dase Kahe Eje Namo Rahae Shri Radha Govinda Preme Sadayena Bhati 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 Namo Nama Tulsi Krishna Priya Se Namo Nama Tulsi Krishna Priya Se Namo Nama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulsi Maharani Jaya Tulsi Maharani Tulsi Maharani Jaya Tulsi Maharani Jaya Tulsi Maharani बोलिए सभी बोलिए तुलसी महारानी जय तुलसी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari. Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavasya cha Krishna Bhakte Pride Deve Satvate Namo Nama. Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakte Pride Deve Satvate Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavasya cha Krishna Bhakte Pride Deve Satvate Namo Nama. Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaya Keshavasya cha Krishna Bhakti Pride Devi Satvate Namo Nama. Krishna Bhakti Pradayani Tulsi Maharani Ki Srila Prabhupada Ki Nitai Nitai Gaur Hari Premanande Hare Krishna. To aap sabhi ka swagat hai. Hamare paas samay to kam hai aur itne kam samay mein Tulsi Maharani ke varnan karna बहुत ही बड़ा परिश्रम का कार्य है. तो इसलिए लोग सोचते हैं तुलसी के बारे में क्या बोल सकते हैं. तो तुलसी के बारे में बोलने के लिए ये इतनी बड़ी पुस्तिका सिर्फ तुलसी महारानी के बारे में है. इस पुस्तिका के अंदर स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण और अनेकों पुराणों से तुलसी महारानी के बारे में वर्णन किया गया है. तो आज हम कुछ श्लोकों को लेकर के और तुलसी महारानी के प्राकट्य को समझते हुए कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप समझ सकें कि तुलसी महारानी की महिमा अपरंपार है. हाँ, उसको अपनी इस बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है, मनुष्य बुद्धि से. तो ये अचिंत्य है तुलसी महारानी. तो उनका वर्णन इस प्रकार से आया है. यदा स्पष्टात्वध्याता कीर्तिता नामाभिस्तुतः रोपित सिंचित नित्या पूजित तुलसी दलम. कहते हैं यदि तुलसी का स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सीचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यदाय प्रदान होता है. लोग पुण्य करते हैं, सब्जी पूड़ी खिलाना, गरीबों को दान देना, हॉस्पिटलों में दवाई फ्री की देना, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है कौन सा? तुलसी महारानी की सेवा कर लेना. कई लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी हमारे पास में हम सुनते हैं साधु संग, साधु संग, हाँ, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. खाली लव मात्र साधु का संग अगर मिल जाए, लव मात्र समझते हैं एक सेकंड का चौदवा हिस्सा, इसको लव कहते हैं. ये संस्कृत भाषा का एक संख्या है जिससे समय को गणना की जाती है. तो एक लव में व्यक्ति का साधु संग प्राप्त आने से क्या होता है? सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धि प्राप्त होती है. लेकिन हम तो हर मंगलवार आ रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है. तो इसमें वो कहते हैं कि अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी और हम सुनने के बाद उसको अपने जीवन में पालन करेंगे. तो तुलसी महारानी एक ऐसे वैष्णव भक्त हैं जो सदा सबके घर में विराजमान है, और नहीं है तो हम उनको विराजमान कर सकते हैं. कहते हैं उनका स्पर्श करने मात्र से, उनका ध्यान करने मात्र से, जैसे अभी हमने किया, नाम कीर्तन करने मात्र से, उनका स्तवन, उनके जो तुलसी महिमा के गुणगान गाने से, उनका आरोपण करने से, एक बीज तुलसी का घर में लगाने से, सीचन, जैसे तुलसी लगा दी तो उनका उनको पानी डालना, रोज उतनी संख्या में पानी डालना कि वो नष्ट ना हो. कई लोग इतना पानी डाल देते हैं कि तुलसी महारानी चली जाती है उस घर को त्याग करके, है ना. और फिर लोग कहते हैं हमारे यहाँ तुलसी टिकती नहीं है. तो तुलसी सही मायने में उसी के घर में टिकेंगी जो व्यक्ति भक्ति करेगा. जिनके घर में तुलसी आप देखेंगे भक्ति नहीं करते हैं, फिर भी तुलसी आ जाती है. हाँ, और वो झाड़ के झाड़ बन जाते हैं, ना वो पानी डालते हैं ना कुछ करते हैं, तो एक्चुअली में वो तुलसी नहीं होती है, वो झाड़ होता है. हाँ, तुलसी सही मायने में वो है जो कृष्ण भक्ति प्रदायनी है, और उसकी शेप देख करके बता सकते हैं आप ये तुलसी महारानी है. अब जैसे मूर्ति यहाँ पे भी है और एक मूर्ति मंदिर में भी है और एक मूर्ति आपके घर में भी है, क्या सब में भगवान है? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं. भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं और भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है. तो एक फूल अगर भाव से दिया जाए तो तुलसी महारानी की भाव पूर्वक सेवा करना ही तुलसी महारानी का सही मायने में प्रकट है. वरना तो वो एक पौधा है, एक पेड़ है, और जिसकी कोई
प्रशंसा नहीं है, लेकिन भक्तिमय तुलसी महारानी किसी किसी के घर में ही प्रवेश करती हैं और वो कृष्ण भक्ति प्रदायनी होती हैं, है ना। तो लकड़ी तो होती है लेकिन उसमें तुलसी नहीं होती, इसलिए वो कभी झाड़ बनता है कभी गायब हो जाता है। लेकिन जिस घर में भक्ति है, जहां सेवा की जाती है, वहां तुलसी सदा सदा विराजमान होती है। जिस व्यक्ति की भक्ति जितनी श्रेष्ठ होगी उसकी तुलसी का पौधा उतना सुंदर बन जाएगा, हाँ ऐसा कहा गया है, शास्त्र में वर्णन है। आगे कहते हैं, नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ती दिने दिने युग कोटि सिंहस्त्राणि ये यान्ति सकृत शुभे। हे शुभे, जो हर रोज तुलसी कोई 9 प्रकार से भक्ति करता है वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने इस सुकृत का लाभ पाता है। कोटि मतलब करोड़ों, आपके करोड़ों जन्मों तक आपको लाभ मिलेगा अगर आपने जीवन काल में एक बार तुलसी महारानी की सेवा करी, है ना। तो कहते हैं, तुलसी कानन राधे ग्रह यस्य वतिष्ठितः तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि नयान्ति यम किंकरः। हे श्री राधे, भगवान कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं, हे श्री राधिके, जिसके घर में तुलसी का वन होता है उसका घर तीर्थ रूप है। क्या है? तीर्थ। हम लोग जाते हैं कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी हरिद्वार, कहाँ गए थे? तीर्थ यात्रा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसके घर में तुलसी का पौधा हो, कुर्वन्ति तीर्थानि, वहां क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। तो जिस घर में भी तुलसी हो वो वृंदावन है, क्योंकि तुलसी का एक नाम है वृंदा देवी, और जिस घर में उनका वन होता है, 10-12 पौधे होते हैं, वो घर क्या बन गया? वृंदावन। और कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में, ये स्थाने वैष्णव गणे ते स्थाने वृंदावने। जिस स्थान में वैष्णव गण रहते हैं, भगवान का भजन होता है, वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से बताया गया है कि हमें तुलसी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। कहते हैं, तुलसी मंजरी भिस्तम पूजितो येन केशवः अजन्म कृत पापस्य तेन समर्जित लिपि। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी से केशव की पूजा करता है, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण, उसकी अनेक जन्म जातियों के पाप राशि पूर्ण समाप्त हो जाती हैं। पाप राशियां हो और अगर वो तुलसी की सेवा करे, उससे ठाकुर जी की सेवा करे, तो उसकी पाप राशियां नष्ट हो जाती है, समूल पापों का नष्ट हो जाता है। तो आप कहेंगे किस प्रकार से तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तो तुलसी के पौधे को इस तरह सोचना चाहिए कि ये कौन है? एक भगवान की प्रिय भक्त, सबसे बड़े वैष्णवी हमारे घर के अंदर विराजमान है। हम बोलते हैं प्रभु जी किसी दिन घर आइए आपकी सेवा करेंगे, प्रभु जी तो आए आए ना आए, लेकिन तुलसी तो सदा सबके घर में है, तो उनकी सेवा बड़े अच्छे से करनी चाहिए। कहते हैं, तुलसी का पत्ता पवित्र होता है, तुलसी की लकड़ी पवित्र होती है, तुलसी की मिट्टी भी पवित्र होती है। अगर तुलसी की मिट्टी, जिस घर में तुलसी लगी है उस मिट्टी को सिर पे लगाएं, तो ये वही फल प्रदान करती है जो वृंदावन की व्रज रज प्रदान करती है। तो अपने सर पे रोज आप देखेंगे भक्त तुलसी की मिट्टी अपने सिर पे लगाते हैं, क्योंकि ये व्रज मंडल की जो व्रज रज है उसी के अनुरूप है ये तुलसी महारानी की मिट्टी जो है। और भगवान को किस तरह से तुलसी ऑफर करनी चाहिए? तुलसी को तोड़ना चाहिए अपने इस उंगली को छोड़ करके इन उंगलियों से। ये उंगली जो है ये अहंकार की उंगली है, जिससे हम जब भी नहीं करते हैं, तो इस उंगली को तुलसी महारानी के पत्रों को तोड़ने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तोड़ना चाहिए। हाँ, तो और क्या बोलना चाहिए? तुलसी सदा अमृतम। तुलसी जो है वो कैसी है? अमृत जैसी है, है ना। और उनकी सेवा मैं किस लिए करता हूं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूं। तो इसलिए हमको हम तोड़ते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपको सेवा किस लिए कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं इसलिए ताकि मैं आपकी केशव की सेवा करूं। कुछ लोग तुलसी महारानी को देवी देवताओं पर चढ़ा देते हैं, ये लो जी तुलसी का भंडार पौधा भरा हुआ है हमारे घर में, ये ले राधा रानी, ये ले दुर्गा मैया, ये ले शिव जी, क्या हुआ? अरे पूजा करके आए हैं बड़ी भारी तुलसी महारानी। कहते हैं अनेकों जन्मों तक, कोटि कोटि जन्मों तक नरक वासना करनी पड़ती है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने तुलसी का अपमान किया उसको किसी देवी देवता के चरणों पे चढ़ा करके। तुलसी अगर है तो सेवल चढ़ने के लिए किसके चरणों में? विष्णु तत्व, नरसिंह भगवान, रामचंद्र भगवान, चैतन्य महाप्रभु, इस तरह से स्वयं श्री कृष्ण, इसके अलावा किसी पर भी तुलसी नहीं चढ़ती है, यहाँ तक कि राधा रानी पर भी तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि राधा रानी भगवान की अलादनी शक्ति है लेकिन कृष्ण नहीं है, इसलिए अलादनी शक्ति को भी तुलसी हाथ में दी जाती है। आप देखेंगे मंदिरों में तुलसी राधा रानी के हाथ में लगी है लेकिन पैरों पे कभी नहीं चढ़ती है, लेकिन जो चढ़ाएंगे उनको बहुत अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए प्रयास करें कि तुलसी महारानी की सेवा हम सुचारू रूप से करें, सही ढंग से करें। कहते हैं विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवा असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्ति दायनी। छह चीजें जीवन में मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। पहली है विष्णुर एकादशी, क्या चीज? विष्णु एकादशी। हर भक्त को जो हरिनाम लेता है उसे एकादशी व्रत महीने में दो बार आता है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। गीता जो हम लगातार हर हफ्ते के हफ्ते पढ़ते जा रहे हैं, भगवद गीता चैप्टर्स, भगवद गीता को पढ़ना यथारूप, तुलसी, तुलसी की सेवा करना, विप्र धेनवा, ये कैसी है? ब्राह्मण की धन को, धन है ना, ब्राह्मण का धन है ये तीन चीजें, और असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्ति दायनी, और ये की सारी चीजें क्या करती हैं? व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाली है ना। अगर कोई व्यक्ति इनकी सही मायने में सेवा करता है, भगवान का नाम, साधु संग और विग्रह सेवा और तुलसी की सेवा, गीता का पाठ और साथ में एकादशी व्रत का पालन, छह चीजों का जीवन में जो करता है वो व्यक्ति क्या होगा, जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है। तो कई लोग बहस करते रहते हैं, अजय प्रभु जी मुक्ति कब मिलेगी, हम तो मोक्ष की कामना करते हैं, संसार बड़ा दुखी लगता है। तो सही मायने में मुक्ति तो भक्त मांगता ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो क्या कहा गया है, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। मुक्ति क्या है? भक्ति की दासी है। तो जो वैष्णव होते हैं, हरिनाम जापक होते हैं, जो भगवान की केशव कृष्ण की पूजा करते हैं, जो तुलसी मंजिरियों से भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने पहली बार बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसी पल वो मुक्त हो गए। तो आप सब लोग कौन है? मुक्त है, हरी बोल, मुक्त है। अब आप किस लिए कर रहे हैं माला? मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो तुलसी महारानी की पूजा करेंगे तो उससे क्या होगा, कृष्ण भक्ति प्रदायनी, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले। तो हम भक्ति चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, हम नहीं चाहते मुक्ति को। वृंदावन के भक्त कहते हैं मुक्ति तो मोए नॉन सी खारी लागे रे वो बोलते हैं मुक्ति तो नमक के जैसी नमकीन है, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति शब्द सुनते ही वैष्णव परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कोटि मुक्त बीच एक वैष्णव गण, कोटि जो मुक्त है ना उनमें से एक कहीं कहीं विरला भक्त बन पाता है, वैष्णव बन पाता है। तो मुक्ति तो बहुत नीचे है, इसलिए हम मुक्ति दायिनी के लिए तुलसी सेवा ना करें, इसलिए करें कि ये कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। और उसकी मंजरियां जो हैं उनको समय समय पर तोड़ें। कहा जाता है मंजरियां जो हैं तुलसी महारानी के नाखून हैं, है ना, तो उनको जैसे हम अपनी नेल कटिंग करते हैं, ऐसे तुलसी महारानी की मंजरियों को समय समय पर, जैसे ही वो इतनी बड़ी हो जाए, तोड़ दें सूखने से पहले और उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, तो दो बेनिफिट, एक तरफ तो तुलसी का पौधा सुरक्षित और दूसरा कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, तो दोनों फायदे हो गए। तो इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, तुलसी के पौधे का बड़ा विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने मंजरियों को पौधे में लगा रहने दिया, तोड़ा नहीं, तो तुलसी का पौधा पूरा सूख जाएगा, पूरा, और सूखने से क्या होगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी आप, क्योंकि तुलसी महारानी जिस घर से जाएंगी तो दुखी से तो जाएंगे, अरे इसने मेरी सेवा नहीं करी, पापी दुराचारी दुष्ट ध्यान नहीं दिया तूने मेरा, मैं धूप में पड़ी रही, मैं बारिश में पड़ी रही, पानी भरता रहा, ठंड में सिकुड़ सिकुड़ के मर गई, तूने मेरा ध्यान नहीं दिया। तो एक भक्त का अपराध है अगर हम तुलसी सेवा नहीं करें ढंग से। हो जाए सेवा करने के बाद भी चली जाए तो ठाकुर जी की इच्छा मानना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से अथक प्रयास करना चाहिए। दो भक्त थे, उनका नाम था सुमेधा और हरिमेधा। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है, कहते सुमेधा और हरिमेधा दोनों तुलसी भक्त थे, तुलसी सेवा करते थे। तो एक बार हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, हे सुमेधा ये बताओ कि तुम तुलसी की इतनी गुणगान, इतनी महिमा गाते हो, इतनी तुलसी पूजा करने का क्या फल है, थोड़ा मुझे भी वर्णन करो। तो उसने क्या कहा, उस सुमेधा ने वहां पर हरिमेधा को कहा कि अच्छा पेड़ की छाया में बैठो, मैं तुम्हें तुलसी गुणगान सुनाता हूँ। और वो तुलसी गुणगान सुनाने लगा। जब तुलसी गुणगान उसने सुनाना शुरू किया उस पेड़ की छाया में वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। तुरंत ही तुलसी महिमा जैसे हम कर रहे हैं और हम भी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही भक्त वहां आकर जब यहाँ तुलसी गान होता है, भगवान का नाम होता है, तो बिना बुलाए विदाउट इन्विटेशन लोग आ जाते हैं। ऐसे ही वहां गांव के वासी आ गए और सब बैठ गए और सब हरि मेधा के कहने पर सुमेधा से क्या सुनने लगे, क्या सुनने लगे? मेधा का मतलब होता है बुद्धि और सुमेधा का मतलब होता है जिसकी बुद्धि कृष्ण में लगी है ना। तो सुमेधा तुलसी का वर्णन कर रहा था और हरि मेधा सुन रहा था और उसकी कृपा से सारे गांववासी सुन रहे थे। अचानक क्या हुआ, अभी तुलसी वर्णन समाप्ति हुआ था, एक विमान वैकुंठ धाम से आया और उस विमान में विष्णु दूत बैठे थे और विमान बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और हरि मेधा देख रहे हैं, गांववासी देख रहे हैं कि विमान आ रहा है। और तुरंत ही विमान जब नजदीक आया तो ठाक करके वट वृक्ष टूट कर गिर गया। सारे गांव वाले भागे, हरि बोल बचो बचो, हाँ मर जाएंगे, पेड़ गिर गया। लेकिन उस पेड़ में से दो यक्ष राक्षस निकले, दो राक्षस, और उन राक्षसों ने क्या कहा, उस राक्षस ने कहा बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, कौन हो? तो यक्ष राक्षस ने कहा मैं जो हूँ श्रापित हूँ, मुझे श्राप मिला था, मैंने एक दिन अपराध कर दिया तो मुझे श्राप मिला कि तुम वट वृक्ष के नीचे क्या बनो, राक्षस बन के रहो। तब मैंने पैर छुए और संत से दुर्वासा ऋषि से कृपा मांगी कि मुझ पर कृपा करिए। तो उन ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ समय बाद इसी गांव में एक भक्त आएंगे और वो तुलसी महिमा तुमको सुनाएंगे। उनकी तुलसी महिमा सुनने मात्र से क्या होगा, तुम अपने यक्ष रोनी से मुक्त हो जाओगे और वहां के धाम वासी गांव वासी भी क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। और आज आज सुमेधा की कृपा से क्या हुआ है, मैंने तुलसी महिमा का कथन वर्णन सुनने मात्र से क्या हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ। और साथ में एक और राक्षस था, दो यक्ष राक्षस थे, और उसने कहा मैं तो इसी गांव का हूँ, मैं यहाँ फंस गया था, पेड़ के अंदर भूत बन के रहता था, पर इस यक्ष राक्षस के श्राप मुक्त होने के कारण मैंने भी कथा सुन ली और आज मैं भी आपकी कृपा से मुक्त हो गया। तो इस मायने में आज जो तुलसी कथा यहाँ हमने ऑर्गेनाइज की है, सही मायने में ये कथा नहीं हो रही है, क्योंकि कथा होनी चाहिए कम से कम 3 घंटे, तब जाके आप तुलसी को कुछ समझ पाएंगे। 20-25 मिनट में तुलसी को समझना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम अपना परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। तो इस तरह से तुलसी महिमा का गान सुनने से, हरि कथा सुनने से पेड़ पौधे जीव जंतु अनजाने जाने जो सुन लेगा, जिसके कान में पड़ जाएगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम हर मंगलवार को क्यों आते हैं प्रभु जी, अगर मुक्त हो गए हैं तो किस लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, मुक्ति के लिए नहीं आते। मुक्ति तो उसी दिन हो गई थी जब आज से 3 साल पहले आपने किसी प्रभु जी से हरे कृष्ण महामंत्र सुना होगा। हाँ, तो इसलिए मुक्ति के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। तो अभी हम चलते हैं तुलसी प्राकट्य की कथा सुनने के लिए। तो तुलसी प्राकट्य कैसे होता है, उसमें बताया गया है, स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था धर्मध्वज। क्या नाम था? धर्मध्वज। धर्मध्वज राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। कठोर तपस्या और हरि भगवान केशव की सेवा करने के बाद उनके घर में एक पुत्री प्राप्त हुई और उनकी पुत्री प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि आपकी पुत्री और कोई नहीं है, ये कौन है, स्वयं लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। तो मतलब तुलसी देवी कोई और नहीं है, कौन है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कौन है, श्री राधा रानी का विस्तार है। तो राधा रानी का विस्तार है रुक्मणी, लक्ष्मी, सत्यभामा, कालिंदी, यमुना, ये सब राधा रानी का विस्तार है। तो राधा रानी एक ही शक्ति है और राधा रानी किसका विस्तार है, कृष्ण की आनंद शक्ति, हलादनी शक्ति। इसका मतलब सब कुछ कृष्ण से निकल रहा है। कृष्ण का विस्तार राधा रानी, राधा रानी का विस्तार लक्ष्मी दी, लक्ष्मी का विस्तार तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी जो है उनका नाम वृंदा रखा गया और वृंदा जो है धर्मध्वज के घर में पलने बढ़ने लगी और उनका हरि कथा सुनने का हमेशा इच्छा रहती थी, सदा हरि कथा सुनने का मन रहता था। और उनके पिता ने कहा अगर तुम सच में भक्त बनना चाहती हो तो तपस्या करो। उन्होंने तपस्या करी तो उनकी तपस्या बड़ी भयंकर लिखी है, स्कंद पुराण में आया है। उन्होंने 30,000 वर्षों तक जल और फल खाया। कितने वर्षों तक? 30,000 years। उसके बाद सूखी पत्तियां चबाई 40,000 वर्षों तक, सूखी पत्तियां, कोई फल नहीं। आपको बोल दिया जाए आज आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, सूखी पत्तियां खानी है आपको, आप अगली बार से आएंगे नहीं, कहेंगे प्रभु जी बुला लेते हैं, कथा भी सुनाते हैं, पत्ती खिला देते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल वायु के ऊपर हवा खा करके अपना जीवन गुजारा और इतना सब करने के बाद में एक पांव पर भी खड़ी रही। जब इतनी तपस्या करी उन्होंने, हाँ कितने साल हो गए, 30 और 10, 40 और 40, 80,000 सालों तक, 80,000 ईयर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, बोले रुको 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 रुको, तुम्हारे वायु को खाने से पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई है, बोलो क्या चाहती हो, व्हाट इज योर चॉइस, क्या वरदान है चाहती हो। उन्होंने कहा एक ही वरदान के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तब उन्होंने अपना वृतांत सुनाया, मैं कौन हूँ। तब तुलसी महारानी कहती हैं कि मैं राधा रानी की एक प्रिय गोपी हूँ, और प्रिय गोपी होने के कारण मेरा एक बार कृष्ण के साथ रास करने का मन हुआ, और रास करते करते कृष्ण ने अपने आप को कई हजार रूपों में विस्तार किया, और एक रूप में जब वो मेरे साथ आए तो मैं इतना प्रसन्न हुई कि रास समाप्त हो गया, लेकिन मैंने कृष्ण को छोड़ा नहीं। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, रास बंद हो गया फिर भी तुमने कृष्ण के इस विस्तार स्वरूप को पकड़ के रखा है, छोड़ो इसे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जिस तरह की इच्छा है ऐसी इच्छा आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है, तो तुम कहाँ चली जाओ, तुम नीचे चली जाओ पृथ्वी लोक में, और उस पृथ्वी लोक में जाकर तुम क्या बनो, एक जड़ पेड़ बनो, क्योंकि तुमने पेड़ की तरह रास प्रसंग समाप्त होने के बाद भी अभी तक क्या किया है, रास को जारी रखा है, तो इसलिए अब तुम जड़ पेड़ बनी रही, तुम पेड़ बनो। ये श्राप दिया किसने, राधा रानी ने उनको कहा जाओ मेरी गोपी ये सखियों में से तुम बाहर निकल जाओ। अब भगवान की इच्छा है, अब कोई कह सकता है अध्यात्मिक जगत में जाने के बाद में भी काम वासना या फिर भगवान के भोग की इच्छा बनी रहती है क्या, तो ये भोग इच्छा नहीं है, ये एक लीला है, क्योंकि अगर ये लीला नहीं होती तो हमारे जैसे पापी व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए तुलसी का प्राकट्य कैसे होता। तो इसलिए तुलसी महारानी को जब ये अपश्राप मिला तो वो नीचे इस रूप में आने के लिए तैयार हुई। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि कुछ ही समय में भगवान का एक विस्तार, जो कि भगवान के ग्वालबाल सखाओं का एक हिस्सा था ऊपर भगवत धाम में, वो ग्वालबाल सखा ने क्या किया, एक दिन वृंदा के ऊपर नजर रखी और कहा ये गोपी बड़ी सुंदर है, किसी दिन इसके साथ रास नृत्य में विष्णु विस्तार बन के मैं संग करूंगा। और इसके कारण कृष्ण ने उनको क्या कहा, जो भोग वांछा करते हैं वो लोगों को मैं अपने साथ नहीं रहता हूं, क्योंकि कृष्ण के रास में काम को इजाजत नहीं है, काम को इजाजत नहीं है। जब वृंदावन में रास शुरू होने वाला था तो कामदेव वहां प्रकट हुए और कहा आज बड़े मजे आएंगे। कामदेव के पास 5 तीर हैं, पता है आपको, पहला तीर क्या है, आंखों का, आंखों के तीर से है ना, पहली नजर में वार कर गई ऐसे गाने गाते हैं, तो आंखों के तीर से क्या होता है, वो कामदेव अपना काम कर देते हैं, वो स्त्री के पास भी है पुरुष के पास भी है, स्त्री का थोड़ा शार्प ज्यादा है। हाँ, तो इस तरह से कामदेव के पास काफी तीर है, वचन बोली का तीर, सुंदरता का तीर, काफी तीरों से कामदेव अपना कार्य करते हैं। और जब इस तरह से उन्होंने कामदेव प्रवेश करने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कामदेव गलत जगह आ गए हो, ये रास काम वासना की स्थली नहीं है, ये महाभागवतों की स्थली है, जहां व्यक्ति के मन में से लेश मात्र काम वासना समाप्त हो जाती है वो रास प्रसंग को समझ पाता है और इसमें प्रवेश नामुमकिन। वो देखो बेलवन, यमुना के पार श्रीवन के अंदर, बेलवन के अंदर लक्ष्मी स्वयं आज तक तपस्या कर रही है, कब मौका मिले मैं वृंदावन के रास में कृष्ण का दर्शन करूं। शिव जी इतने बड़े होने के बाद भी उनको रास में प्रवेश करने के लिए गोपी स्वरूपा बनना पड़ता है, इसलिए इस रास में कामदेव तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कामदेव माना नहीं, बोला आज तो मजे आएंगे, आप लड़की को पकड़ेंगे, आप उनके साथ घूमेंगे, तो मैं भी पूरा आनंद लूंगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने रास शुरू किया, कामदेव वहां से झुलस झुलस के जलने लगा उसका शरीर और वहां से गायब हो गया, किसी ने उसको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि भगवान का रास काम वासना का हिस्सा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम लोग क्या करोगे, कृष्ण कृष्ण अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तार करते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम अपना विस्तार 2 रूपों में भी कर पाए। कृष्ण 16,108 स्त्रियों को इकट्ठा एक ही समय में संतुष्ट करते हैं, हम एक पत्नी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते, पीछा ठोड़ाते रहते हैं उससे, कौन सा अशुभ दिन था मेरी शादी हो गई, है ना। तो इसलिए हम कृष्ण की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वो परब्रह्म है, वो भगवान है और हम एक छोटे से तुच्छ जीव हैं, तो इसलिए हमारी भगवान से कोई बराबरी नहीं। इसलिए उस ग्वाल सखा को भगवान ने क्या कहा, तुम भी भौतिक संसार में जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। उधर वृंदा देवी नीचे आई और इधर कौन नीचे आया, ग्वाल सखा नीचे आया, और उसका नाम क्या पढ़ा? शंखचूड़। कई जगह पर उसको जलंधर कहा गया है, कई जगह पर उसको शंखचूड़ कहा गया है। हाँ, तो कई पुराणों में अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है। और वो कैसे प्रकट हुआ? शिवजी के नेत्रों से प्रकट हुआ। समुद्र का पुत्र था, समुद्र के पुत्र था। शिवजी के नेत्रों में क्रोध अग्नि जो थी, उस अग्नि से वो प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद में उसने भी बहुत कड़ी तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में क्या बन गया? वो एक शक्तिशाली राक्षस बन गया। कई पुराणों में वर्णन है कि वो दंभ नामक एक राक्षस थे, उनका पुत्र था। और दंभ होता है ना, हमें दंभ होता है अहंकार, तो उस राक्षस का नाम ही था दंभ। और इसलिए इसमें अहंकार एक राक्षस ही है, जिसको अहंकार है वो व्यक्ति राक्षस ही है। तो दंभ राक्षस के घर में शंखचूड़ का जन्म हुआ। अब राक्षस घर में हुआ है तो राक्षस प्रवृत्ति थी। इतनी तपस्या करी, इतना शक्तिशाली बन गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा वो चीज प्रदान करो जिस चीज से मेरी कभी मृत्यु ना हो। उन्होंने कहा इस संसार में तो बस एक ही चीज है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, और कृष्ण रक्षा करना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। कहा तो फिर ऐसा क्या मैं लूं जिससे मेरी कृष्ण रक्षा करें? कहा ये लो, इसे केशव कवच कहते हैं। केशव कवच प्रदान किया और कहा इस कवच को जब तक पहनोगे तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और कहा कि अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम जाओ, तुम्हारे लिए एक स्त्री वेट कर रही है, तपस्या कर रही है, उसको कृष्ण विस्तार रूप में क्या चाहिए? संग चाहिए, पति चाहिए, तुम उससे विवाह करो। तो शंखचूड़ राक्षस और लक्ष्मी का, वृंदा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में दोनों बड़े ही प्रसन्नता से, बड़े ही अच्छे तरीके से पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए दोनों रह रहे थे। लेकिन इधर शंखचूड़ राक्षस था, शक्तिशाली था, कृष्ण कवचधारी था, उसने पूरे ब्रह्मांड पे क्या किया? कब्जा कर लिया। इंद्र देवता को लात मार के निकाल दिया स्वर्ग से, कहा भागो यहां से, ये तो मेरा है। हाँ, और इंद्र बिचारे भागे भागे आए तो किसके पास आएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेचारे भागे भागे आए और कहा सर, ओ लॉर्ड, हे कृष्णा, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा अरे आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे तो फिर आपका फायदा क्या? आपका कवच दिया है हमने तो लोग कहेंगे कृष्ण बड़े अजीब हैं, पहले कवच देते हैं और फिर खुद ही मारने पे आ जाते हैं, इसलिए आप मत जाइए, आप अपने किसी भक्त को भेजिए। तो भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? वैष्णवानाम यथाम शंभु, शिव जी को भेजा गया। सावन के महीने में शिव जी चल दिए और कहा सब लोग तो बोल रहे हैं बम बम बोले, लेकिन मैं जाऊंगा किस लिए? कृष्ण सेवा करने के लिए। और वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए पहुंच गए अपने धनुष बाण को लेकर। उस धनुष से तीर चलाने के लिए तैयार हुआ और खूब देर तक, कही है, कहा जाता है एक वर्षों तक युद्ध चला, एक साल लगातार। कभी शंखचूड़ शिवजी को नीचे गिरा दे, कभी शिवजी शंखचूड़ को नीचे गिरा दे, और सारे देवी देवता से हाथ पकड़ के कांप रहे और देख रहे युद्ध बड़ा भयंकर चल रहा है। आखिरी में उसने एक शस्त्र का इस्तेमाल किया जिसके सबसे आगे कृष्ण का तीर था, उसके बीच में शिव जी की शक्ति थी और उसके पीछे ब्रह्मा जी की शक्ति थी, और इन तीनों शक्तियों को मिलाकर के वो वाण लगाने वाला था। नारद मुनि आए और उन्होंने कहा अभी वाण मत चलाओ, अभी तो कृष्ण कवचधारी है तो ये मरेगा नहीं, इसलिए इस बाण को वेस्ट मत करो। कृष्ण भगवान को आग्रह किया गया, कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप रख के आए और कहा हे मैं तुमसे दान चाहता हूं। तो शंखचूड़ ने कहा ब्राह्मण दे, बताइए क्या दान दे सकता हूं? कहा पहले हाम ही भरो जो मांगूंगा दोगे। कहा ले लो। तो उन्होंने क्या मांगा? मुझे अपना कवच दे दो। कवच लेकर कृष्ण, कवच लेकर के कृष्ण चले गए ब्राह्मण रूपधारी। और अभी ये शंखचूड़ इतने सालों में भूल गया था कि मैं कृष्ण कवच की रक्षा से जीत रहा था, उसे लगा मैं तो अपनी शक्ति, जैसे हमको भी लगता है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रिया मणानी गुणे कर्माणि सर्वशः। हमें लगता है ये तीनों गुण काम नहीं कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं नहीं करूं ना प्रभु जी तो ये काम होने वाला नहीं है, ऐसी जो इच्छा आती है शंखचूड़ को भी आ गई। और उधर भगवान कृष्ण ने एक और चीज सुनी, सारी सतियों ने कहा कि पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण वृंदा का पति अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म के कारण शक्तिशाली है, अगर उसका पतिव्रता धर्म भंग होगा तो शंखचूड़ की शक्ति हीन हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है ये काम भी मुझे करना पड़ेगा, परेशान हो करो तुम लोग, लड़ाई झगड़ा करो तुम लोग, सॉल्व करने के लिए तो मुझे बुलाते हो। तो भगवान आए और भगवान ने शंखचूड़ का वेश धारण किया और वृंदा के कमरे में घुसे, उसके घर के अंदर, और कहा देखो सती तुम्हारी शक्ति से आज मैं विजयी हुआ। मैंने शिव को इतना मारा शिव अपने धाम को चले गए। देवी देवता डर करके वापस चले गए और मेरे कई बार आग्रह करने पर शुक्राचार्य के कहने पर मैंने इंद्र को उसकी गद्दी भी प्रदान कर दी। साशा कुशलता से सारा युद्ध समाप्त हुआ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो तुम्हारी जय हो वृंदा, तुम्हारी जय हो कह के शंखचूड़ के रूप में भगवान प्रवेश कर गए। अब उसने सेवा करी, भगवान की खूब रखी और अपने पति के साथ रात को सो भी गई। जब वो अपने शंखचूड़ ने जैसे ही अपनी पत्नी को टच किया और वो बोली कि आपके आज हाथ लगाने में वो बात नहीं है जिस प्रेम से आप रोज मुझे हाथ लगाते थे। अपने आप बताइए, आप सच मायने में कौन है? कहीं आज आप कोई वेशधारी तो नहीं है? तो वृंदा के इस आग्रह पर भगवान झूठ तो बोल नहीं सकते थे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं वेशधारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसे करके बोले। कहा नहीं नहीं सच बताओ। तो भगवान ने सच बताया और अपना रूप प्रकट किया। जब प्रकट किया रूप तो वो घबरा गई, बोली मैंने व्रत लिया था कि अपने पति के अलावा कोई पुरुष मुझे टच नहीं कर सकता। आज कृष्ण आपने छल से, भ्रम से मुझको छू लिया। इस कारण से आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरा पतिव्रत धर्म समाप्त हो गया। और जैसे ही वहां उसका पतिव्रत धर्म समाप्त हुआ, उधर शिवजी ने बाण छोड़ दिया और छोड़ते ही शंखचूड़ की गर्दन कट गई। सारे देवी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। हाँ, कहा शिवजी की जय हो, शिवजी की जय हो, शिवजी की जय हो। और इधर कृष्ण भगवान को वृंदा ने श्राप दिया, कहा आप भगवान हैं, स्वयं भगवान होकर आपने ऐसी लीला क्यों करी? आपने क्या कर दिया आज पत्थर रूपी बनकर? ऐसे तो व्यक्ति वो होता है जिसका हृदय पत्थर जैसा होता है, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि आप जन्म जन्म तक पत्थर बन के पड़े रहे। तो जब भगवान ने कहा देखो वृंदा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सब कुछ तो मैंने तुम लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए किया है, क्योंकि तुमने गोलोक धाम में जब तुम राधा रानी की सखी थी, तुम्हारे मन में क्या इच्छा आई थी? मैं कृष्ण का संग करूं, और आज मैंने उसी इच्छा को पूर्ति किया है। और शंखचूड़ की इच्छा थी कि वो तुम्हारा संग करे, इसलिए मैंने उसे नीचे भेजा और उसने तुम्हारा पति धर्म स्वीकार किया। तो इस तरह से मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ, सर्व कारण कारण हूँ। और आज अगर तुम मुझे श्राप भी देना चाहती हो तो भक्तों के लिए तो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम कौन हो? कृष्ण प्रियसी हो, तुम मेरी प्रिया हो, इसलिए मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने अपने आप को शालिग्राम रूप में विस्तृत कर दिया, और आज भी नेपाल में गंडकी नदी में शालिग्राम विराजमान होते हैं। और तुलसी महारानी को तब ये पता चला तो लक्ष्मी जी और भगवान की सखियां सारी वहां आई और उन्होंने वृंदा को श्रापित किया, हमारे पति को पत्थर बनाने वाली तुम क्या बन जाओ? तुम्हारा शरीर जो ये भौतिक शरीर है ये क्या बन जाए? नदी बन जाए। और तुम्हारे बाल क्या बन जाए? वृक्ष बन जाए। तो क्योंकि वो दिव्य स्त्री थी तो उनके जो शरीर था उससे गंडकी नदी प्रकट हुई, और उनका जो बाल थे, केश थे, उससे तुलसी महारानी के वृक्ष उत्पन्न हुए। और कहा गया कि आज के बाद में क्योंकि तुम मेरा संग चाहती थी, तुम्हें सदा सदा मेरा संग प्राप्त होगा। तुलसी की सेवा तभी मानी जाएगी जब वो शालिग्राम के ऊपर रखी जाएगी। हाँ, तो उस दिन से शालिग्राम और तुलसी की सेवा शुरू हो गई। आज भी गंडकी नदी में आप जाएंगे, तुलसी महारानी के पौधे को या पत्ते को हाथ में रखेंगे और नदी का जल हाथ में लेंगे, ऑटोमेटिकली शालिग्राम वहां पर तैरते हुए आपके पास आ जाएंगे। देखा गया भक्तों ने, कमंडल के अंदर, जल कमंडल में एक तुलसी का पत्र डाल दो और जल भरो तो उसमें 4-5 शालिग्राम आ जाएंगे। शालिग्राम एक प्रकार का कीड़ा होता है जो गंडकी नदी में पाया जाता है। काले रंग के पत्थर के अंदर घुसकर वो भगवान के 24 अवतारों को विस्तार पूर्वक नक्काशी करता है। आप शालिग्राम पत्थर को दो भाग में बांटेंगे तो उसमें दिखाई देगा सुदर्शन शालिग्राम में पूरा सुदर्शन चक्र बना हुआ है, नरसिंह शालिग्राम में पूरे नरसिंह भगवान बने हुए हैं। तो इस तरह से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई भी काला पत्थर शालिग्राम है। कई लोग भेजते हैं ओवल पत्थर होता है उसे कहते हैं शालिग्राम है, तो हर शालिग्राम ऐसा नहीं होता, शालिग्राम बहुत बड़ा होता है। शालिग्राम को दो भाग में बांटें तो उसके अंदर भगवान का पूरा चित्रित होता है वो। आप बाजार में जाएं तो कई ज्वेलर्स के पास में शालिग्राम मिलते हैं, एक पत्थर तकरीबन 2,500-3,000 रुपए का मिलता है ऐसा शालिग्राम। लेकिन हमें खरीद कर उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा तभी करने को मिलती है जब कोई भक्त वो शालिग्राम आपको प्रदान करे। उस दिन से तुलसी महारानी बड़ी ही प्रसन्नचित होने लगी और सदा भगवान की सेवा में रहने लगी। कहते हैं पुष्पेषु तुलनाप्यस्य नासिता देवीषु वा मुने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी चाचा कार्तिता। हे मुनि, सभी पुष्प समूह में एवं सभी देवियों में जिनकी कोई तुलना नहीं है, इसी कारण से समस्त पुष्प एवं देवियों में पवित्र रूप वाली इस देवी को तुलसी कहकर वर्णित किया गया है। तो तुलसी पवित्र है और भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो अब हम आप लोगों से यही आशा करेंगे कि आप सदा भगवान की सेवा किससे करें, तुलसी से करें हैं। और तुलसी की मंजरियों को अपने, इसमें बहुत कुछ वर्णन है, हम ले नहीं पाएंगे इस कम समय में। तुलसी की मंजरियों को अगर आप भगवान के मस्तक पर रखा जाए तो बहुत कृपा मिलती है, भगवान के भोग में रखा जाए तो कृपा मिलती है, भगवान के चरणों पर रखा जाए तो कृपा मिलती है। अगर आपको कभी तुलसी पत्र कहीं से मिलता है, उसको सूंघने मात्र से आपकी सूंघने की शक्तियां इतनी उत्कृष्ट हो जाएंगी कि कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। हम लगाते हैं परफ्यूम, इत्र, लेकिन तुलसी जो है वो भगवान के चरणों से आती है, उस तुलसी को खाने से पहले सूंघना चाहिए। सूंघने से आपकी जो ये नासिका इंद्रियां हैं ये पूरी पूरी पवित्र हो जाती हैं। तो इसलिए तुलसी बहुत ही कृपा करने वाली हैं। इस तुलसी को द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्राकट्य हमने पढ़ा ये द्वादशी के दिन होता है। द्वादशी मतलब एकादशी के दूसरे दिन। संडे का कोई सिस्टम नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है संडे को तोड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब तुलसी प्रकट हुई स्कंद पुराण में तब संडे नहीं बना था। संडे 2016 साल पहले क्रिश्चियंस ने बनाया। हाँ, उस समय स्कंद पुराण में सत्युग की कथा आपने सुनी, उस समय संडे नहीं था, द्वादशी थी। तो द्वादशी के दिन उनका जन्म होता है और जन्मदिन के दिन, द्वादशी के दिन उनको तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। सूर्य अस्त से पहले उन्हें तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के बाद उनको जल से धोना चाहिए, धोने के बाद में उनको भोग में अर्पित करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना धोए सूखी तुलसी मिट्टी लगी हुई हम चढ़ा दें। भगवान की सेवा में सूखी तुलसी पवित्र करके चढ़ाई जाती है। उनका जो बचा हुआ जल है धोने के बाद, अब वो जल नाली में नहीं फेंकना चाहिए। उस जल को अपने मस्तक पे अगर डालते हैं तो क्या फल मिलेगा? गंगा स्नान का फल मिलता है। हरी बोल। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, मत। हाँ, अर्पित कर सकते हैं। भोग कैसे लगाएंगे? ऑब्वियसली एकादशी के बाद तो वैसी भूख लगी होती है, व्रत तोड़ा होता है, परायण होता है, तो व्रत परायण के समय तुलसी रख करके ही भोग अर्पित किया जाता है। तो इसलिए तुलसी अर्पित करके भोग लगा सकते हैं। तो पहले दिन तोड़ लें, एकादशी के दिन मल्टीप्लाई आप तोड़ सकते हैं, जो दो तीन दिन तुलसी चलेंगी। कहते हैं तुलसी दल और गंगा जल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी अपवित्र नहीं होती हैं। जमीन में गिर जाए तो भी चढ़ाने योग्य हैं, 10 दिन पुरानी हो तो भी चढ़ाने योग्य हैं। सूख जाए एकदम, एकदम ऐसे हो जाए कि अब क्या होगा, फिर भी उसकी एक अंश भी अगर भोग में डाल दें तो भी कृपा मिले। कई बार हम लोग ट्रेवल करते हैं, तुलसी महारानी के पौधे नहीं मिलते, तो हम भक्त क्या करते हैं, मंदिर से तुलसी महारानी के जो चढ़े हुए अर्पित पुष्प है ना, वो ले जाते हैं फूल पॉकेट में, और वो सूख जाते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन। और फिर जैसे हमने मैंगो शेक लिया, लस्सी ली, अब उसे क्या करें, ऑफर तो कर नहीं सकते हैं, मानसिक ऑफरिंग करके उसमें वो ऑफर्ड तुलसी डालने से वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। और कुछ सूखी पत्तियां ले जाते हैं जो कि ऑफर करने के काम आती हैं। तो ट्रैवलिंग करते में भक्तों को हमेशा अपने साथ 10-15 पत्तियां, सूख जाएं, सड़ जाएं, पुरानी हो जाएं, फिर भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। गंगा जल अपने घर में रखिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, कभी भी अपवित्र नहीं होता। वैसे गंगा जल और तुलसी दल, ये दोनों चीजें अपवित्र नहीं होती हैं, ये सदा ही पवित्रता प्रदान करने वाले हैं। तुलसी महारानी की जय, वृंदा महारानी की। तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान से आने वाली तुलसी की माला को पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान की तुलसी माला को पहनने योग्य नहीं है। तो हम पा सकते हैं, उसके पत्तों को तोड़ करके ले सकते हैं, ठीक है।